अध्याय दो श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भाषांतर। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। श्लोक संख्या 51 अध्याय 2। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त नामयम्। ट्रांसलेशन। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो श्लोक संख्या 50 अध्याय 2। भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अच्छे तथा बुरे दोनों कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। कोई ये न समझे कि मैं तो अच्छे कार्य कर रहा हूं, पर उससे भी तो मुक्ति चाहिए। अच्छे कार्य चाहिए ही नहीं, अच्छे तथा बुरे जो भी है मुक्ति चाहिए। तो क्या कह रहे हैं भगवान, इसी जीवन में मुक्ति हो सकती है। कितनी पॉजिटिव बात भगवान बता रहे हैं, इसी जीवन में। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, कैसा कार्य करना पड़ेगा, क्या करना होगा, ऐसा कौन सा कार्य करना होगा जिसकी वजह से अच्छे तथा बुरे दोनों कार्यों से मुक्ति हो जाएगी। और ऐसे कार्यों को कहते कि कुशल कार्य, यही तो वास्तव में कौशल्य है। कौशल्य अर्थात स्किल। क्या है वास्तव में स्किल? स्किल यही है कि अच्छे तथा बुरे दोनों कार्यों से मुक्ति। नहीं तो हम देखते हैं संसार में कई वर्षों तक व्यक्ति सोचते रहते हैं, उनको बड़ा अभिमान भी होता है कि प्रभु जी हमने तो कभी किसी का खराब नहीं किया है, ना ही हम कोई गलत कार्य करते हैं, और अच्छा है। परंतु ये जो भी कुछ कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य से व्यक्ति को बंधन हो जाता है, बंध जाता है व्यक्ति उससे। तो इस श्लोक में अर्जुन को भगवान कह रहे कि ऐसा कार्य करो कि जिससे बंध न जाए, मुक्त रहो, मुक्ति हो जाए। तो उसको कहते हैं योग। भगवान क्या कहते हैं? योग कर्मसु कौशलम। तो कहते हैं अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि यही सारा क्या है? कार्य कौशल है, यही तो स्किल है। योग के लिए प्रयत्न करो, दिस इज द स्किल, यही स्किल है, यही कौशल्य है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो श्लोक है, ये श्लोक है आर्ट ऑफ वर्किंग। हमने बहुत सारी आर्ट सीखी है, परंतु यह श्लोक बताता है आर्ट ऑफ वर्किंग। काम तो, कर्म तो करना ही है ना, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना ही है। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जो कर्म नहीं करता हो। कर्म करना ही है, कैसे कर्म करे? केवल आर्ट ऑफ लिविंग समझ के काम नहीं चलेगा। आर्ट ऑफ लिविंग में वर्किंग आता है, इस अहम मुद्दा है वर्किंग। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं आर्ट ऑफ वर्किंग, कैसा वर्क करे, किस प्रकार, कैसा भी वर्क करो तो प्रॉब्लम ही है, कुछ भी करो तो प्रॉब्लम ही है। संसार कोई प्रॉब्लम से मुक्त नहीं, कठिनाइयों से या परेशानियों से संसार मुक्त नहीं हुआ है अभी तक है। सारा संसार कार्य कर्मों में लगा हुआ है, कोई ऐसा है जो कर्म नहीं? सारा संसार कर्म में ही लगा हुआ है, फिर भी परेशानियों से मुक्त नहीं है। तो अर्थात कर्मों में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि किस प्रकार से कर्म करना होता है। ऐसे कर्म करते हैं तो हमको परेशानियां नहीं होगी, ना ही हम कर्म के जंजाल में फंस जाएंगे। ये जो हमारे कर्म है, रोज हमारे लिए बहुत बड़ा बड़ा जाल बुनते हैं, है ना। तो कर्म तो काम तो कर रहे हैं, एक्शन हम कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ रिएक्शन आ रही है। एक्शन हम कर रहे हैं, साथ ही साथ चुपचाप से रिएक्शन आ रही है, और वो रिएक्शन एकत्रित होते जा रही है। अचानक एक दिन हमको उसको फेस करना होता है। तो इसमें भगवान कहते कि ऐसा मत करो, पहले समझो कि किस प्रकार से काम किया जा सकता है, किस प्रकार से कर्म किए जा सकते, काम अर्थात कर्म, किस प्रकार से कर्म किए जा सकते हैं। इस श्लोक में लगभग भगवान अर्जुन को फटकार रहे कि भाई समझो, क्या बात कर रहे हो, युद्ध नहीं करेंगे, समझो किस प्रकार से कर्म करना है। और ये कर्म से इसमें क्या बताया है, ऐसे कार्य करने से व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने को मुक्त कर लेता है। भक्ति में संलग्न मनुष्य अपने आप को इसी जीवन में ये रिएक्शन से अपने आप को मुक्त कर लेता है। जो रिएक्शन हमको आती है, उससे अपने आप को व्यक्ति इसी जीवन में मुक्त कर सकता है, ऐसे बोल रहे भगवान। बहुत सी बार ये विचार होता है कि इस जीवन में क्या है प्रभु जी, अगले जीवन में देख लेंगे, अभी क्या घाई है, नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे। अभी पूरा प्रयास करते हैं कि अगला जीवन मनुष्य का मिले और फिर तब देखेंगे। तब नेक्स्ट जीवन तो मनुष्य का ही मिलेगा, उसके लिए प्रयास करते हैं और फिर उस जीवन में देखेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है। या इसी जीवन में बहुत सी बार सोचा जाता है अभी क्या जल्दी है, अभी तो रिटायरमेंट होने दो, फिर रिटायरमेंट के बाद बोलते अभी क्या जल्दी है, पोते की शादी होने दो, पोते की शादी होगी अभी क्या जल्दी है, उनको पर पोते होने दो उनको कौन देखभाल करेगा, तब देखेंगे। अंत में कहते इस जीवन में क्या जल्दी है, नेक्स्ट अगले जीवन में देखेंगे। तो ये जो पोस्टपोन का कार्यक्रम है नित्य, ये बड़ा धोखा है। इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य जीवन को हमने गंभीरता से समझा नहीं है। ऐसी बातें तभी होती है जब हम मनुष्य जीवन को गंभीरता से नहीं समझते। मनुष्य क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, इसको हमने गंभीरता से अभी तक लिया ही नहीं है, नहीं लिया है, तभी तो हम इस प्रकार से गंभीर होते नहीं इन विषयों पे। कर्म वगैरह जो है इस पे गंभीर नहीं है होते हैं। जो व्यक्ति इन विषयों में गंभीर होता है समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को मनुष्य जन्म का सार समझना है, मनुष्य का उद्देश्य समझना है, क्या क्यों मनुष्य बन गया है। तो इसलिए भगवान बड़े प्रेम से और बड़ा हृदय से अर्जुन को समझा रहे आर्ट ऑफ वर्किंग, किस प्रकार से कर्म करना है। तो क्यों समझा रहे हैं भगवान आर्ट ऑफ वर्किंग, या भगवान इसमें कह रहे हैं कि अच्छे ये कर्म जो है योग कर्म सुकौशलम, अर्थात सारे कार्य कौशल क्या है, योग ही सारा कार्य कौशल है। और योग किसको कहा है भगवान ने, पहली लाइन देखिए, भक्ति में संलग्न मनुष्य जो कर्म करता है, अर्थात जो कर्म व्यक्ति भक्ति में संलग्न होके करता है उसको योग कहते हैं। और फिर कहते हैं यही स्किल है वास्तव में। तो यहां पे भगवान कहते हैं क्योंकि यह कर्म जो है, ये जो एक्शन है, ये जो कर्म है, ये अच्छे या बुरे कर्मों का फल जो होता है वो फल को नाश करती है। अब आप बोलेंगे फल को नाश करती है तो फिर कर्म करेंगे क्यों यहां कहा गया है भक्ति में संलग्न रह के यदि हम कर्म करते, अर्थात भक्तिमय भाव से कर्म करते हैं, तो क्या होता है, वो कर्म से जो रिएक्शन आती है, वो जो कर्म से जो रिएक्शन आती है, जो प्रतिफल प्राप्त होता है, वो नष्ट हो जाता है। और वही तो जंजाल है, सारा प्रॉब्लम तो वही है। काम कर्म एक करने गया, देखिए व्यक्ति साधारण जन्म लेता है, छोटा बालक होता है, बड़ा होता है, फिर स्कूल में एडमिशन लेता है। जब वो स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसको हजारों बातें पता चलती, उसको तो इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर ये वो फलाना ठिकाना बनना है। स्कूल में जाते से उसको ऐसी बातें पता चलती है, फिर उस बात पे काम करना शुरू करता है। एक काम करने गया, कौन सा काम, शिक्षण प्राप्त करना, इसके लिए गया, लेकिन उधर से कितना बातें लेके आया, बहुत सारी बातें लेके, फिर इतनी सारी बातें जब लेके आया तो सक्सेसफुल व्यक्ति हो जाता है, इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर जो भी है वो बन जाता है। उसका कर्म इतना ही है, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का ही काम करे, इतना ही कर्म है। पर ये कर्म करते करते उसको अनेक फैक्टर उसके सामने आ जाते हैं, पूरी इंडस्ट्री आ जाती है, बहुत सारे कलीग्स काम करने वाले साथीदार आ जाते हैं, उनकी विचारधारा आती है, एक काम करते करते उसके साथ हजारों विचार जुड़ जाते हैं। फिर आगे चल के विवाह हो जाता है, वो तो सोचता है बस विवाह हो जाएगा, हो गया, क्या करना है। पर जब विवाह हो जाता है तो वो जो लाइफ पार्टनर है, केवल लाइफ पार्टनर ही नहीं आता है, लाइफ पार्टनर के साथ अब जो विचार आ जाते हैं, पहले ये लाखों विचार हो गए, अब ये और दूसरे लाखों विचार आ गए। इस प्रकार से एक कर्म करने जाता कुछ और उससे विचार जो उत्पन्न होते वो होते कुछ और फिर और आगे एक्सपांशन प्रोग्राम है कि नहीं, तो उसमें और लाख लाख विचार एक एक इसमें आ जाते अननोइंगली, अज्ञानता से। तो ये प्रोसेस है भगवत गीता, इस प्रोसेस को मत करो ऐसा नहीं बोल रही है भगवत गीता। भगवान यहां पे कह रहे कि ये सब होता है। अब ये सब जो होता है हमारे साथ इतना गहराई से न होए, इसलिए भगवान यहां कह रहे कि ये सब करो। लेकिन कैसे? योग में स्थिर होके करो। अपने शक्ति को पहले समझो क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे पास बुद्धि है, मन है और शरीर है, मैं तीनों को जानता हूं क्या? मेरे ही अपने ही, दूसरों के नहीं। दूसरों के तो हम बहुत जानते हैं, दूसरों का मन कैसा है बहुत खराब है, दूसरे की बुद्धि एकदम भ्रष्ट है, मेरी बहुत अच्छी है। तो दूसरों का विचार नहीं करना है, करना अपना विचार है, मेरा मन कैसा है, मेरी बुद्धि कैसी है, मैं क्या कर्म करता हूं, मैं कौन से कर्म कर सकता हूं, कौन से कर्म नहीं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं, और उसमें यश यदि प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, इसके बंधन में मैं नहीं फंसना चाहता हूं, मुक्त जीव रहना चाहता हूं। तो इसलिए इतने सारे एक्शंस, रिएक्शंस, कंफ्यूजन, इतना सब कुछ है। भगवान अर्जुन को बड़े प्रेम से, हृदय से बोल रहे, अर्जुन तुम्हारी दशा इस प्रकार से हो गई है, परंतु समझो, क्या समझो, जो स्किलफुल वर्क है, जो पूरा जो कौशल्य है, कौशल्य के साथ काम करो, स्किल के साथ अपना वर्क करो। और अल्टीमेट स्किल क्या है? तो वो कहते योग। और योग किसकी व्याख्या? योग अर्थात क्या? भक्ति में संलग्न रह के कर्म करना है कि नहीं? सुपर शॉर्ट सिंपल सोल्यूशन है। नहीं तो भगवान चाहे तो ये भी बोल सकते थे कि पहले युद्ध मत करो, बाण नीचे रख दो, 25 साल तक अंदर हिमालय में जाके पहले मेडिटेशन करके आओ, हाँ फिर तुम्हारी मेमोरी शार्प हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन होगा और फिर कर्म करो। आजकल ऐसे ही चलता है ना, मेडिटेशन करो, योगा करो, मेमोरी शार्प हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, हाँ सर नीचे पैर ऊपर करो, ये आसन करो, वो फलाना करो, और फिर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। भगवान यहां क्या कह रहे हैं? कर्म करते वक्त भक्तिमय कर्म करो, कॉन्शियसनेस, अपने विचार, अपना भाव, भगवान के भक्ति में अपना भाव लगाओ, उसी को योग कहते हैं। और वही कर्म स्किलफुल कर्म है, वही कर्म कौशल्य है। तो इस प्रकार के अच्छे कर्म बुरे कर्मों का नाश नहीं करते, यह बात ध्यान में रखना चाहिए। कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं हर शनिवार को मारुति भगवान बजरंगबली को नारियल फोड़ता हूं, या कोई मंगलवार को देवी या शुक्रवार को देवी का व्रत करता हूं, और इतर दिन बुधवार को मांसाहार करता हूं, मंगलवार और शनिवार को व्रत करता हूं और बुधवार को मांसाहार करता हूं, तो मैंने जो अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काट देंगे, है कि नहीं? बरोबर कि नहीं? +1 -1 = 0, न्यूट्रल, है कि नहीं? मैथमेटिक्स, हाँ, +1 - 1 = हो गया न्यूट्रल। तो जितने समय खराब कर्म करते उतने समय अच्छे भी कर्म करते, अच्छा बुरा = 0। पर यहां क्या कह रहे हैं? अच्छे कर्म बुरे कर्मों का नाश नहीं करते, ये बात ध्यान में रखने वाली है। कर्म, यहां कर्म का विषय हो रहा है, अच्छे कर्म बुरे कर्मों का नाश नहीं करते, अर्थात जो मैंने कर्जा लिया है वो कर्जा तो पे करना ही पड़ेगा। बुरे कर्म अर्थात सर पे कर्जा, लोन, हाँ, वो तो भोगना ही होगा, बुरे कर्मों के फल का टेस्ट करना ही पड़ेगा कैसा है। जो बुरे कर्म हमसे हो जाते हैं या किसी से हो जाते हैं, वो बुरे कर्मों का फल का टेस्ट लेना ही पड़ता है, बन ही जाता है अपने लिए वो फल तैयार। अच्छे कर्म का भी फल टेस्ट लेना पड़ता है, दोनों का टेस्ट लेना पड़ता है, दोनों टाइप के फल अपने पेड़ को लग जाते हैं, वृक्ष को लगते हैं, और दोनों को खाना पड़ता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अच्छे कर्म किए तो बुरे कर्म, अच्छे कर्मों के बल पे बुरे कर्म करना बहुत बड़ा अपराध है, है कि नहीं है? अच्छे कर्मों के बल पे कोई कोई लोग बहुत बड़ा समाज की सेवा करते हैं, अन्नदान करते हैं, लोगों को मंदिरों के सामने मस्जिदों के सामने रह के खड़े रह के बड़े बड़े अन्नदान करते हैं, बेगर्स भिखारी सब सब लोगों को बहुत लाखों लोग लाखों रुपयों का अन्नदान करते हैं, और जब अपने काम पे जाते हैं तो करोड़ों रुपए का स्कैंडल करते हैं। कर्म ऐसे करते हैं कि वो कर्म से अब्जो रुपयों का धोखाधड़ी करते हैं, स्कैंडल करते हैं, और मंदिर में जाके अन्नदान करते हैं, गरीबों को अन्न बांटते हैं। तो इससे कर्म जीरो नहीं हो जाता है, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। अन्नदान किया उसका भी फल भोगना है, और जो बुरा काम किया उसका भी फल। लेकिन कहा गया है परंतु योग के द्वारा दोनों कर्मों के फलों का नाश होता है। बताओ, पर आप बोलेंगे नहीं, अच्छे कर्म के फल का नाश क्यों होने देवे, वो तो दे दो। भाई अच्छे कर्म का जो फल है वो हमको दे दो, बुरे कर्म को नाश कर दो। व्यवहार की बात है, व्यवहारिक बात है। परंतु वो जो अच्छे कर्मों का फल है, वो अच्छे कर्म के फल में बंधन है, हम उसमें भी बंध जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। और जब बंधन में आ जाते हैं तो हम, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हमारा आइडेंटिटी क्या है, वो हम समझ नहीं पाएंगे, फल ही खाते रहेंगे, जीवन बीत जाएगा फल खाते खाते। हमारा जो मुख्य जीव का जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है वो हमको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि बंधन में फंसते जा रहे हैं, नहीं कि नहीं? कैसे बंधन में, कोई अच्छे काम व्यक्ति अपना अपना काम करता है, धन का एकत्रित करता है, फल उसको प्राप्त होता है, अपना संसार चलाता है, बराबर है, इसमें नथिंग इज रॉन्ग, है कि नहीं? परंतु यह कार्य करते वक्त उसके संपर्क में पूरी प्रकृति आती है, कर्म करते वक्त उसके संपर्क में संपूर्ण संसार आ जाता है, पूरी प्रकृति आ जाती है, और प्रकृति है चलायमान। जब वो चलायमान प्रकृति के साथ अनरिलायबल एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, तो वो मन भी चंचलता के संपर्क में जब मन आता है तो वो भी चंचल हो जाता है, और चंचलता के कारण वो मन इस प्रकृति के रजस तमस और सत्व गुणों से अटैच बन जाता है, बांध लेते ये गुण उसको, है ना? मान लो मैं कोई कर्म करता हूं, रोज ऑफिस में जाता हूं, ऑफिस में जाते आते जाके आता हूं, और महीना भर ऐसे प्रकार से कर्म करता हूं, महीने के अंत में कुछ धन प्राप्त होता है, फल धन के रूप में, सैलरी के रूप में फल प्राप्त होता है, फिर उस सैलरी का उपयोग मैं अपने सांसारिक चीजों के लिए करता हूं, और एंजॉयमेंट शारीरिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नॉर्मली सभी लोग करते हैं, किसी को किसी का बुरा नहीं सोचता हूं, कभी भी बुरा कर्म नहीं करता हूं, कोई भी गलत बात नहीं करता हूं, बस अपना कर्म करता हूं, उधर से आता हूं, जो फल प्राप्त होता है उससे एंजॉय करता हूं, उसमें क्या गलत है? कोई गलत है इसमें कुछ बात? भगवान जो कह रहे हैं कि दोनों फलों का नाश हो जाता है, कहने का अर्थ यह है कि भाई अच्छे फल का नाश क्यों भगवान करते हैं, अच्छे कर्मों के फल का। तो इस प्रकार से मैं रेगुलर कर्म यही कर रहा हूं, पर मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है उसका क्या उद्देश्य है? मैं ये समझता हूं, शास्त्र ये कहते हैं, प्रभुपाद जी महाराज बारंबार कई जगह कहते हैं, कई बार कहे हैं कि जो प्राणी है वेजिटेरियन हाथी या गाय, वो भी यही करता है सेम। इवन गधा भी यही करता है, वो भी वेजिटेरियन है, कभी बुरा नहीं करता है किसी का। कभी गधा जबरदस्ती किसी को मारेगा नहीं, किसी को हानि नहीं पहुंचा। कभी देखा आपने गधे ने किसी को हानि पहुंचाया? एक बार लाइन पकड़ लिया रास्ता की, सीधा चलता है, हाँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई खराब कर्म नहीं करता है ना। दिन भर मेहनत करता है और पूरा दिन भर मेहनत करने के बाद वो जो फल उसको मिलता है उसको एंजॉय करता है। मनुष्य भी यही करता है। भगवान यहां जो बता रहे हैं कि मनुष्य भी, कोई जो सात्विक है वो भी कर्म करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते, बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, कर्म करते, दिन मेहनत करते हैं। संसार में कहा जाता है भाई मेहनत करो, मेहनत मेहनत करके अपना जीवन यापन करो, अच्छी बात है। तो वो भी मेहनत करता है, बुरा नहीं करता है, ये भी मनुष्य मेहनत करता है, बुरा नहीं करता है किसी का भी, इसको भी फल मिलता है, उसको भी फल मिलता है। तो भगवान यहां बताना क्या चाहते हैं, भगवान बताना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से वह गधा, वो डोंकी उस फल से अटैच हो गया है, अभी उसको पता है दिन भर मैं घूमूंगा फिरूंगा, काम ट्रांसपोर्टेशन का काम करूंगा, शाम को मुझे मिलेगा। इस अटैचमेंट, रैशनल अटैचमेंट, गलत नहीं है, मनुष्य भी यही करता है, गलत नहीं है। परंतु जो क्रिएटिविटी है, जो निर्माण हुआ है ये सारा संसार, ये जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, प्रत्येक जन्म प्रत्येक योनि का अलग अलग उद्देश्य है। मनुष्य योनि का उद्देश्य क्या है? भगवान देखिए इसलिए ये फलों का भी नाश करने का बोल रहे हैं, अच्छे कर्मों के फल का भी, क्योंकि इससे बंधन में पड़ जाएंगे और उतना ही काम करते रहोगे जीवन भर। जीवन भर फल प्राप्त करोगे, उसको खाओगे चखोगे और फिर वही काम वही फल, वही काम वही फल, वही काम। प्राणी डोंकी और मनुष्य, इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। भगवान मनुष्य को ऊपर की सलाह दे रहे हैं, ऊंचा उठने की बात कह रहे हैं। अरे ये अच्छा काम क्या लेके बैठे हो, अच्छा काम बुरा काम ये फल सब क्या करो, योगस्थ योग में स्थिर होके कर्म करो। कर्म करते वक्त कॉन्शियस रहो, कृष्ण भावनामृत इसी को कहते हैं, कृष्णा कॉन्शियस रहो, मतलब भक्ति से युक्त रहो। पहले ही कहा गया है बुद्धि युक्तो जहाति, इसके पहले हमने देखा बुद्धि योग अर्थात क्या, बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग। तो भक्तिमय कर्म करने से इस प्रकार से हम बंधन में नहीं फंसते हैं। बिचारे प्राणी जो होते हैं वो कॉन्शियस भक्तिमय होके कर्म नहीं कर सकते। डोंकी कितना भी सोचे तो उसकी सोच कहां तक जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के काम तक ही जाएगी, इससे आगे वो नहीं सोच सकता, भोग योनि है। मनुष्य सोच सकता है, इसलिए मनुष्य को ये जो कर्म फल है इसकी चिंता नहीं करना है, कर्म फल के चक्र में नहीं पड़ना है। और भगवान कह रहे कि यदि आप योगस्थ, यदि इस प्रकार से आप भक्ति में जीवन जियोगे तो अपने आप ये जो फल मिल रहे अच्छे और बुरे कर्म के नष्ट हो जाए। इसलिए कहा गया है अच्छे कर्म के फल बुरे कर्म के फल को नहीं मारते, बल्कि यदि आप भक्ति योग में है, भक्ति में चेतना में है, तो दोनों फल समाप्त हो जाएंगे। अर्थात जो बेड़िया है ना हम लोगों के हाथ में और पैर में बेड़िया है, वो बेड़िया टूट जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बुद्धि से युक्त व्यक्ति शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के फलों को त्याग देता है, दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देता है। जो व्यक्ति भक्तिमय जीवन जीता है, जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस है, वह व्यक्ति इस प्रकार के जो कर्म हम करते हैं अच्छे या बुरे, उन दोनों को अच्छे से समझता है और उनको त्याग देता है, बुरे कर्म है कि नहीं। पर ये कौन कर सकता है? अरे अर्जुन नहीं कर पा रहा है, अर्जुन भ्रमित स्थिति में आ गया है, उसको भगवान समझा रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे भगवान। हमारी भी दशा, हम तो अर्जुन के तुलना में कहीं पे भी नहीं है। पर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, आप ऐसा मत करो, आप योग में स्थिर हो जाओ, भक्ति में जीवन में स्थिर हो जाओ और फिर कर्म करो। पूरी भगवद गीता प्रोसेस, पूरा भगवद गीता का संदेश यही है कि अच्छे कर्म करो, अर्थात भक्तिमय चेतना के साथ कर्म करो, नहीं तो फिर बेड़ियों में तो जकड़े ही है, बेड़िया तो लगी है, बंद है हाथ पर, एक मर्यादा के अंदर ही हम सब जीवन जी रहे हैं, अर्थात बंद है। अभी हम देखते हैं कई जगह पे कई बार कि हमको बंधन भी अच्छे लगते हैं। नहीं भाई, किसी को कहिए कि अरे थोड़ा सा जप करो, क्या जरूरत क्या है? अरे इतना समय मैं दूसरे काम कर सकता हूं, जरूरत क्या है? ये बहुत बड़ा अज्ञान है। वो सोचता है, ऊपर से हमको भी बताता है, मैं कभी भी किसी का भी खराब सोचता भी नहीं हूं, मैं मन से बहुत अच्छा हूं। देखो बताने वाले लोग कहते हैं, देखिए मन अच्छा है ना, बस हो गया काम, सब अच्छा है, सब अच्छा है, मन अच्छा है, सब अच्छा है, मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूं, मैंने जीवन में एक भी व्यक्ति को बुरा नहीं बोला, गाली नहीं दी या भला बुरा नहीं कहा, एक भी व्यक्ति को, तो मुझे भगवान का नाम लेने की जरूरत क्या है? जब मैंने, मेरा बुरा होगा कब? जब मैं किसी का बुरा करूंगा। मैं बुरा किया ही नहीं है और करूंगा भी नहीं, तो मुझे भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? है कि नहीं? ये प्रश्न हमको तो बहुत लोग बोले हैं, ऐसे प्रचार करते वक्त बहुत लोग ऐसे बोलते हैं हमको, क्या आवश्यकता है प्रभु जी इतना सब करने की, हम बड़े मस्त आराम से किसी को बुरा, कभी किसी का बुरा भला नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, बहुत बढ़िया कर्म करते हैं, किसी को प्रताड़ित नहीं करते हैं, अपना जीवन यापन शांति से करते हैं, जैसे अभी हम चर्चा किए, वो उसको भी, वो भी बंधन में है, वो भी जेल में है, उसको भी हथकड़ी लगी हुई है, उसको हथकड़ी जो लगी हुई है वो सोने की है, वो भी जेल में है, वो भी कठड़ी में, केज में है, पिंजरे में है, लेकिन वो जो पिंजरा है, क्या कहते केज को, पिंजरा क्या कहते हैं, पिंजरा, वो जो पिंजरा है ना वो सोने का है, सोने के पिंजरे में वो है, और जो बुरे कर्म करता है, स्वार्थी प्रवृत्ति है भयंकर, वो लोहे के पिंजरे में है। व्हाट इज द डिफरेंस? तो जो लोग, जो व्यक्ति ये कहता है कि प्रभु जी हमको क्या जरूरत है, हम तो बहुत अच्छे हैं, तो वो व्यक्ति क्या है, वो हमको ये बताने का प्रयास करता है, प्रभु जी मैं तो सोने के पिंजरे में हूं, ये बताने का, मैं पिंजरे में सोने के, गोल्डन केज, तो बहुत अच्छी बात है ये, सोने के पिंजरे में बंद रहना अच्छी बात है कि बुरी बात है, कौन सी बात है? क्यों, सोने का पिंजरा है ना। हाँ बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है, कौन से वस्तु से? सोने से बंधा हुआ है, सोना अर्थात चमक धमक, राजस रजस, सोने का केज या सोने का पिंजरा अर्थात राजसिक बातों से बंधा हुआ है, और राजसिक बातें अर्थात अट्रैक्शंस, आकर्षण, बहुत सारे आकर्षणों से बंधा हुआ है। वो भी प्रॉब्लम, वो भी प्रश्न नहीं है, वो भी कठिनाई नहीं है। कठिनाई क्या है? उसको वो अच्छा समझ रहा है, यही तो कठिनाई है, यही तो बहुत बड़ा प्रश्न है समाज का, पूरे संसार का। जेल में फंसा हुआ है लेकिन बोलता है मजा आ रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जेल में रहो मत रहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों को संचित करता रहता है। हमें समझना चाहिए कि मुख्यतः कर्म तीन प्रकार के होते हैं, है ना? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहे हैं, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। वो कहते हैं संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध, तीन प्रकार के कर्म। संचित अर्थात, संचित कर्म अर्थात पहले से जो कर्म किए हैं, अनेकों प्रकार के पहले जो कर्म किए अनेकों जन्मों में किए हैं, उन सारे कर्मों को क्या कहते हैं? पहले के जो कर्म है, अर्थात ये गोडाउन भरा पड़ा हुआ है, कब से उसमें वस्तु एकत्रित करके जमा कर दी है, गोडाउन भरा पड़ा हुआ है संचित कर्मों का, गोदाम पूरी तरह से फुल पैक है, इतने संचित कर्म हैं। ये संचित कर्मों की विशेषता क्या है? ये संचित कर्मों का ये जो भंडार है, इसकी विशेषता क्या है पता है आपको? यदि ये संचित कर्मों का भंडार हम नष्ट नहीं करेंगे तो इन संचित कर्मों के कारण हमको करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। कभी चींटी, कभी हाथी, कभी चींटी बनेंगे, कभी हाथी, कभी अमीबा, इतना दिखेगा भी नहीं, कुछ भी, करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे यदि हमने ये संचित कर्मों का भंडार ऐसा ही मेंटेन किया। मेंटेन कर रहे हैं हम लोग संचित कर्मों के भंडार को, इसको मेंटेनेंस नहीं करना, मेंटेन नहीं करना चाहिए, इसको एक बॉम्ब डाल के ब्लास्ट करके खत्म कर देना चाहिए। इस भंडार में बहुत बड़ा बॉम्ब डालना चाहिए, इस भंडार को खत्म, ब्लास्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए संचित कर्मों के। कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजाम। ब्रह्म संहिता में कहा है कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भजाम। ये जो भंडार है कर्मों का, इसको नष्ट करना है तो केवल क्या है? भक्ति, केवल भक्ति, भक्ति भजाम, भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करने से ये संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के कर्म हैं क्रियमान कर्म। क्रियमान अर्थात जो डेली हम कर रहे हैं, अभी रोज वर्तमान में जो कर रहे हैं क्रियमान कर्म है कि नहीं? रोज कर्म करना पड़ता है ना, सब लोग करते हैं ना, कोई नहीं करता है? कोई है जो कर्म नहीं करता है? सब करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जो हम रोज के कर्म वर्तमान में कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रियमान कर्म। अब ये क्रियमान कर्मों की क्या विशेषता है? देखिए संचित कर्मों की विशेषता ये है कि संचित कर्मों के कारण हमको करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं, यदि वो नष्ट नहीं हुए तो। क्रियमान कर्म जो अभी हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों की क्या विशेषता है? हाँ, ये भी एक बात है, डायरेक्ट टिकट भी मिल सकता है। क्रियमान कर्मों की यह बात है कि क्रियमान कर्मों को यदि हमने नष्ट नहीं किया तो वो संचित होते जाते हैं, बराबर कि नहीं है कि नहीं? देखिए, संचित कर्मों को नष्ट नहीं किया तो करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं, गोडाउन भरा का भरा ही रहता है। क्रियमान कर्मों के रिएक्शन से, क्रियमान कर्मों को नष्ट नहीं किया तो ये क्रियमान कर्म संचित के गोडाउन में, बहु भंडार में जमा होते जाते हैं और वो गोडाउन भरते जाता है। अर्थात क्रियमान कर्म संचित होते जाते हैं, क्रियमान कर्म संचित। अब सोचिए कि रोज हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, क्रियमान कर्म के जो फल है कितना प्रोड्यूस करते हैं हम रोज, और उसको कितना फलों को उसमें संचित के भंडार में डाल देते हैं ट्रांसपोर्ट। हाँ? हमारे जो क्रियमान कर्म है वो सारे संचित हो रहे हैं, भंडार में जमा हो रहा है पूरे ट्रक के ट्रक। भगवान इस श्लोक में आर्ट ऑफ वर्किंग समझा रहे हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं। आर्ट ऑफ वर्किंग अर्थात ऐसा कर्म जिसकी वजह से बंधन न पड़े, अर्थात ऐसे कर्म जिसकी वजह से संचित कर्म का भंडार बढ़े नहीं बल्कि कम होवे, वो कर्म है भक्तिमय कर्म। कर्म करो लेकिन भक्ति के साथ, भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के कर्म करो, भगवान सब कुछ है यह समझते हुए कर्म कीजिए। क्रियमान जो कर्म है, क्रियमान कर्म अर्थात वर्तमान के कर्म, वर्तमान कर्म करते वक्त भी कृष्ण कॉन्शियस। भगवान इतना अर्जुन को ये समझा रहे, देखिए वो बोला कि यदि मैं मारूंगा तो ऐसे होगा, मैं युद्ध करूंगा तो पाप होगा, संचित खराब हो जाएगा, संचित कर्म हो जाएगा, और संचित कर्म होता है उसका रिएक्शन भयंकर आ जाएगा। तो भगवान कहे ये संचित कर्म ही नहीं होगा क्योंकि ये कर्म योग होगा। तो हमारे भी अर्थात जो हमारे क्रियम जो वर्तमान कर्म है, क्रियमान कर्म है, ये कर्म भी यदि हम भगवान के उपदेश के अनुसार भक्तिमय विचार से यदि करते हैं तो हमको भी, हमारा भी भंडार भरेगा नहीं, संचित कर्मों का गोडाउन खाली हो जाएगा, भरेगा नहीं है? तो ये दूसरा प्रकार क्या है, क्रियमान कर्म, इसको भी नष्ट करना चाहिए। इनको नष्ट नहीं करेंगे तो संचित में जुड़ते जाएंगे, एडिशन होती जाएगी। तीसरा क्या है, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म अर्थात ये वो कर्म है जो संचित से लिए गए। हाँ, संचित कर्मों से वो आ गए लेकिन उसको फल लग गया, पक गया उसका फल, अर्थात उसका फल हमारे लिए फाइनल हो गया। अब वो हमारे हाथ आ ही गया फल, अब वो चखना ही पड़ेगा। संचित कर्मों का एक गोदाम भंडार भरा पड़ा हुआ है, उसमें के कुछ कर्म ऐसे हैं उनकी मैच्योरिटी हो गई। अर्थात उनको जो फल है उसका फल बन गया, अभी वो हमको खाना ही पड़ेगा। बहुत ढिलाई बरती ना, पूरा भंडार पड़ा हुआ है उसमें कई कई कर्मों को फल लग गए। हाँ, कई कर्मों की मैच्योरिटी हो गई, अब वो हमका हमारे नसीब में आने ही वाले, फिक्स है, वो आएंगे, खाना ही पड़ेगा हमको उसको। इसको क्या कहते हैं, प्रारब्ध। ये हम कहते हैं बहुत बारी हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध है मतलब ये कंफर्म है, ये फल हमको मिल रहा है, अभी गोडाउन में नहीं पड़ा है, गोडाउन में पड़े पड़े मैच्योर हो गया है, पक गया है। भंडार में पड़े पड़े पक गया है, वो है थे प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए दो चार जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो बन चुके हैं। हाँ, जन्म लेने पड़ते हैं। पर इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, भक्ति से संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, प्रारब्ध कर्म के अनुसार तो हमको दो चार जन्म तो लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि फल तो मिल गया अभी पक्का, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। परंतु भगवान यहां कह रहे भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर सकता है, अर्थात इन बंधनों से मुक्त कर सकता है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा अगले जीवन में उसका उसको ये वो जीवन प्राप्त होगा जिसमें पूरी तरह से भक्ति में जीवन रहेगा और भगवान उनको प्राप्त हो जाएगा। पर यहां तो भगवान कह रहे कि इसी जीवन में भी हो सकता है, इस जीवन में भी साक्षात भगवान का दर्शन हो सकता है। हा? त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, ऐसे भगवान का दर्शन हो सकता है, साक्षात दिख सकते आ सकते बातचीत कर सकते हमारे साथ, ऐसे इसी जीवन में हो सकता है। कर्म का बंधन भी नहीं रह सकता है हमको, परंतु कैसे, भक्ति करने से। विदाउट भक्ति कुछ भी पॉसिबल नहीं, भक्ति के बिना यदि हम बहुत अच्छे भी हैं तो भी हम सोने के पिंजरे में बंद हैं। विदाउट डिवोशनल लाइफ यदि हम अच्छे भी हैं तो भी हम सोने के पिंजरे में बंद हैं। और भक्तिमय जीवन यदि है और हम भक्ति भगवान की भक्ति करते हैं और विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती है तो भी वो बंधन से हम मुक्त रहते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है, दिस इज आर्ट ऑफ वर्किंग। ये कर्म इस प्रकार से होना चाहिए, मत है कि नहीं, कर्म इस प्रकार से होना चाहिए। तो कृष्ण कॉन्शियस जो व्यक्ति होता है, भक्तिमय जीवन में जो व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, संचित कर्मों के भंडार को ब्लास्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो आगे भगवान कहते हैं तस्मात योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम योग के लिए प्रयत्न करो। भगवद गीता में एक श्लोक बार एक शब्द बार बार आपको समझ में आएगा, कौन सा, तस्मात, इसलिए क्या है, तुम योग के लिए प्रयत्न करो। भगवान ने पहले कारण बताया क्यों योग के लिए प्रयत्न करना है, तो पहले जो बताया इसलिए योग के लिए प्रयत्न करना है, तस्मात योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम योग के लिए प्रयत्न करो। भगवान कह रहे हैं कि कर्म बंधन से छूटने का जितना प्रयास करोगे अकेले अपने बलबूते, कर्म बंधन से छूटने का जितना प्रयास करोगे उतना उसमें उलझते जाओगे। ये भूल भुलैया है। कर्म बंधन से अपने बलबूते जितना निकलने का प्रयास करोगे उतना उसमें फंसते जाओगे। क्यों ऐसा होगा, क्यों फंसते जाएंगे, मैं समझ रहा हूं कि मैं फंस गया हूं पर मैं उसमें से निकलना चाहता हूं, मैं समझ गया हूं कर्म बंधन में फंस गया हूं पर ये कर्म बंधन से निकलना चाहता हूं, तो मैं अपने बल पे प्रयास कर रहा हूं। तो भगवान कह रहे ऐसे प्रयास से तो और फंसते जाओगे। आपको एक बात बताई थी, एक बेचारे बहुत अच्छे ब्रह्मचारी थे, बड़े सात्विक प्रवृत्ति के साधु थे, अपने कुटिया में साधना करते थे, पर वो साधना करते करते उस कुटिया में क्या है, एक चूहा आता था और वो चूहा बहुत बार बार डिस्टर्ब करता था। बड़े परेशान हो गए, क्या करे क्या करे क्या करे। चूहा डरता भी नहीं है, साधु से आजकल कोई नहीं डरता है, साधुओं से कोई नहीं, उल्टा उसको समझ क्या है सब, चूहे भी नहीं डरते। तो उस चूहा उनको बड़ी डिस्टर्बेंस, बड़ा तकलीफ दे रहा था, तो उन्होंने सोचा इसको डराने के लिए बिल्ली लेके आएंगे। ये जो एक डिस्टर्बेंस है, एक जगह फंस गए, चूहे का तकलीफ हो रहा है, उस तकलीफ से दूर होने के लिए उन्होंने सोचा यहां बिल्ली लाके रख देता हूं। उन्होंने बिल्ली लाई है। अब वो बिल्ली का उत्पात बढ़ गया, बिल्ली बहुत उत्पात करने लगी, पर अब बिल्ली का उत्पात इसलिए बढ़ा क्योंकि उसको खाने को नहीं मिलता है ना। उनको ये साधु है तो जीव दया तो है ना, उनको लगा कि बिचारी बिल्ली है, चूहे को तो डरा दिया, चूहे का तो दिखना बंद हो गया, पर ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली भूखी है इसलिए ऐसा चिल्लाते रहती है। अब बिल्ली को तो दूध ही देना चाहिए ना, है कि नहीं, बिल्ली को क्या देंगे, दूध देंगे ना, तो बिल्ली को दूध कहां से लाएंगे। तो बिल्ली को दूध देने के लिए गाय पालते हैं, इसलिए बिल्ली का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, गाय को रखा, गाय की सेवा करने लगे। जब उन्होंने देखा कि इतना काम, गाय का दूध निकालना, गाय को घास लाना, गाय के लिए गोबर वो सब निकालना, उसकी व्यवस्था करना, साधना कब करेंगे, इतना काम बढ़ गया। अब वो सोचे कि नहीं नहीं नहीं, ये जो ब्रह्मचारी का जीवन है ना, इसमें कुछ कमी है, अब मैं विवाह कर लेता हूं। अब विवाह कर लेता हूं। अब उन्होंने विवाह किया, अब गाय भी है और पत्नी भी है। अब पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो ब्रह्मचारी थे, भिक्षा मांग के जीवन, पांच घर में गए, माधुकरी किया, हो गया, अभी तो पत्नी आ गई। प्रॉब्लम क्या था प्रभु जी, एक चूहा, अपने बलबूते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने गए, क्या हो गया। वो इतने फंसते गए कि अब उसमें से निकलना, अब चाहे तो भी वो छोड़ के भाग के नहीं जा सकते। अब नहीं जा सकते, अब पूरी तरह से बहुत डीपली फंस गए। तो यहां पे वही भगवान भी वही कहते हैं कि कर्म बंधन से छूटने का जितना प्रयास करोगे अपने बलबूते, उतना उसमें फंसते जाओगे, वो घुसते जाएंगे हम अंदर ही अंदर अंदर ही। इसलिए इस ओर बिल्कुल ही प्रयास मत करो, दूसरी ओर प्रयास करो, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को ग्रहण कर लेता है, जो व्यक्ति भक्तिमय जीवन को ग्रहण कर लेता है, वही शुभाशुभ कर्मों को, कर्मों के बंधनों से निकल सकता है। क्यों क्यों निकल सकता है, क्योंकि वो ये जो बंधन है, इन बंधनों को अकेले प्रयास नहीं करता है तोड़ने का, वो भगवान पे निर्भर होता है। कहता है कि भगवान ये सारी माया तो तुम्हारी है, ये सारा जंजाल तो तुम्हारा ही है। और निकाल भी तुम ही सकते हो, तुम ही वो हो जो मुझे बंधन से बचा सके, ऐसे बोलते हैं। जो भक्ति में होता है, भक्ति में जीवन जीता है, वो अपने बलबूते कुछ नहीं करता है, और जो कुछ भी करता है वो भगवान का आश्रय लेके करता है, इसलिए वो बंधन में नहीं फंसता है कि नहीं, इसीलिए वो बंधन में नहीं फंसता है। परंतु होता यह है ना, ये बात तो बहुत अच्छी है कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत मार्मिक बात है, करना चाहिए। परंतु भगवान और मेरे बीच में क्या आता है, भगवान के और मेरे बीच में आती है मेरे डिजायर्स, मेरी वासना है, मेरी इच्छा है। बात तो एकदम परफेक्ट है कि भगवान का आश्रय लेके जो भी कर्म करेंगे रिएक्शन नहीं आएगी, ठीक बात है। भगवान का आश्रय कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी चीज है जो मुझे भगवान का आश्रय ही नहीं लेने देती है। हाँ, नहीं लेने देती है भगवान का आश्रय। वो कहती है कि इसका संसार का आश्रय लो, बहुत मजा है। संसार के चक्र में फंसो, बड़ा आनंद है। भगवान की ओर मत देखो, बड़ा दुख है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसी मेरी वासनाएं, मेरी इच्छाएं बोलती है। ये इच्छाएं और वासनाएं क्या होती है? ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होती है। यही इच्छाएं हमको कृष्ण कॉन्शियस नहीं होने देती है। यही डिजायर्स हमको कृष्ण कॉन्शियस नहीं होने देती, और इसीलिए हम बंधन में फंसते रहते हैं। देखिए बात क्या है, बंधन से निकलते नहीं, इसका कारण क्या है? क्या कारण है? फंसते ही जाते हैं। क्या कारण है? डिजायर, इच्छा है, वासना है। जितनी इच्छाएं प्रकृति को एंजॉय करने की होती है, उतनी इच्छाओं के सामने कृष्ण कॉन्शियस होने की इच्छाएं कितनी होती है? आप हम सोच सकते हैं अपना अपना इंडिविजुअली कि एंजॉय करने, तो क्या शास्त्र ये कहते कि एंजॉय मत करो? क्या भगवान ने अर्जुन को यह कहा कि तुम युद्ध करो, सब फिनिश करो, लेकिन राजा मत बनो? ऐसा कहा नहीं। उन्होंने कहा राजा बनो, स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा, ऐसे भी बोले वो पहले। अर्थात ये बात नहीं है कि आपको सुख, भगवान चाहते कि सुखी ना हो, नहीं। प्रश्न क्या है, मुख्य प्रश्न क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, भाव, डिजायर, इच्छा है। बड़ा खतरा है ये, बहुत भयंकर खतरा है। यही इसलिए कहते हैं ना, थोड़ी सी रॉन्ग डेफिनेशन है, मैं वह भक्त की व्याख्या करता हूं, मनुष्य माइनस डिजायर, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू डिवोटी। मैन और ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। मनुष्य माइनस, माइनस को हिंदी में क्या कहते हैं? आजकल सभी इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन है। मनुष्य मनुष्य में से वासनाओं को और इच्छाओं को घटा दो तो बचेगा डिवोटी। मनुष्य में से भौतिक वासना और कामना, भौतिक, इनको मिटा दो, घटा दो, निकाल दो, माइनस कर दो, कट कर दो, तो बचेगा प्योर डिवोटी, है कि नहीं? शुद्ध भक्त। और भगवान वही बनने के लिए कह रहे हैं। भगवान कह रहे कि भक्ति भाव युक्त, भक्ति युक्त, अर्थात माइनस कुछ अपने अंदर कुछ तो है, उसको माइनस करो, कुछ बातें हैं उसको घटाओ, और वो है भौतिक कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स, और उसी के कारण हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते हैं। और उनको पूर्ण करने के चक्कर में व्यक्ति उनको और निर्माण करते रहता है। वासना युक्त दो प्रकार के कर्म है, भौतिक वासना युक्त कर्म और भगवत भावना युक्त कर्म। भौतिक वासना युक्त कर्म करने से व्यक्ति वासनाओं में से और घिरते जाता है, पूरी तरह से घिर फंस जाता है, उसमें जंजाल में फंस जाता है। और भगवत भक्ति युक्त कर्म उससे बंधन से निकल जाता है। दो प्रकार के कर्म, दो प्रकार के कर्म है। ये हमेशा दोनों रास्तों को पक्का ध्यान में रखना चाहिए। एक जो रास्ता है वो इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाता है, और दूसरा रास्ता जो है वो भगवान की ओर ले जाता है। अर्थात भगवान का इसी जन्म में दर्शन हो सकता है, भगवान का साक्षात्कार इसी जन्म में हो सकता है। एक रास्ता वहां तक ले जाता है और दूसरा रास्ता क्या करते हैं, भौतिक संसार के इंद्रिय तृप्ति के लिए ले जाता है। इंद्रिय तृप्ति अर्थात सोने का, ये बात ध्यान में रखिए, सोने का पिंजरा। इसलिए भगवान अर्जुन को इसमें सलाह दे रहे हैं कि ट्राई टू लर्न द आर्ट ऑफ वर्किंग। इसलिए भगवान अर्जुन को सलाह दे रहे कि प्रयास करो, क्या करो, प्रयास करो। यशोदा मैया ने भी प्रयास किया था। कौन सा प्रयास करो, आध्यात्मिक रास्ता चुनने का प्रयास करो। एक रास्ता सोने के पिंजरे की ओर जा रहा है और एक रास्ता भगवान की ओर जा रहा है, तो जो भगवान की ओर जो रास्ता जा रहा है उसको चुनने का प्रयास करो, उस दिशा में जाने का प्रयास करो। भगवान का कहने का तात्पर्य यह है, उधर जाने का प्रयास करो, प्रयास करो। माता यशोदा ने भी प्रयास किया था, माता यशोदा भी तंग आ गई भगवान से, कितना नटखट है, एक भी काम इसका सीधा नहीं है, पूरा टेढ़ा है, त्रिभंग तो है ही है, सब टेढ़ा है, उनके ऊपर भजन भी है, सब टेढ़ा है काना का। माता यशोदा परेशान हो गई, क्या करे इसको, इतनी नटखटता। ठीक है तुम माखन को लेके बंदरों को बांट रहे हो, अभी तुमको सिखाती हूं, अभी तुमको पकड़ती हूं। माता यशोदा निकली उसको पकड़ने के लिए, लाला को पकड़ने के लिए, और ये भाग रहे हैं, भाग रहे ये जोर से, और माता जी भी उनके पीछे भाग रही है। कई देर तक ये सब चलता रहा। अंत में देखा लाला ने कि ये तो पूरी तरह से पसीने से भीग गई है, पूरे बाल खुल गए सर के, उसमें जो वेणी जो फूल रखे थे सब नीचे गिर रहे हैं जमीन पे, और बड़ी विचित्र अवस्था में है, हाथ में स्टिक लेके भागी है पीछे, लकड़ी लेके। देखा पीछे मुड़की कि अरे और भी भाग रही है, चलो भगाओ, और मेरे पीछे भाग रही, चलो और भगाओ, और भगाए और भगाए और भगाए। अंत में देखा कि अब बहुत 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 थक गई है, बहुत थक गई है, ठीक है बांधना चाहती हो बांध लो। तो भगवान क्या बता रहे इस लीला से, भगवान बता रहे प्रयास करो, प्रयास। माता यशोदा प्रयास कर रही है, भगवान चाहते तो माता यशोदा ने जब ऐसी वो लकड़ी उठाई मारने के लिए, मारना तो नहीं चाहती थी वो, केवल डरा रही थी, तो ऐसे लकड़ी उठाई, भगवान चाहते तो तभी सरेंडर। अरे कितना प्रेम करती है मेरी मैया, मुझसे कितना प्रेम करती है, इसको क्यों तकलीफ, चलो ठीक है आप जैसा बोले। एक ही बार में वो बंद जाते थे, परंतु उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने क्या किया, क्या किया भगवान ने, भगाया उनको, बहुत बहुत भगाया, बहुत भगाया। और जब पूर्ण हुए प्रयास उनके, तब जाके वो बंद गए, प्रेम के बंधन में। अर्थात जब पूर्ण प्रयास हो गए, जब प्रयास पूर्ण हो गए तभी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। जब प्रयास पूर्ण हो गए तभी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, ऐसे भगवान कहना चाहते हैं। और इसलिए यहां पर भी भगवान क्या कह रहे हैं, प्रयास करो, प्रयास। कौन सा प्रयास करो? योग में स्थिर, भक्ति में स्थिर होके कर्म करने का प्रयास करो। प्रयास पूर्ण प्रयास होगा तभी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। ऐसा नहीं चलेगा एक दिन बहुत बहुत प्रयास किया, दूसरे दिन कुछ भी नहीं। प्रयास पूरा चाहिए, प्रामाणिकता से प्रयास चाहिए। तो योग कर्मसु कौशलम, इस ये जो श्लोक में लिखा है योग कर्मसु कौशलम, यही कौशल्य है, योग ही कौशल्य है कर्म का। और योग अर्थात भक्तिमय चेतना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस पे बहुत सुंदर, कहते हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कार्य करना है। हमें क्या करना है? कार्य करना है। कर्म तो हमको करना ही है। बिना कर्म के हमारा शरीर भी आत्मा के साथ नहीं रहेगा। बिना कर्म किए शरीर भी आत्मा के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही आत्मा इस शरीर में आ जाता है अपने आप हाथ पैर हिलना शुरू हो जाता है, पंच प्राण है ना, वायु प्राण वायु को लेना शुरू हो जाता है। ये सारा कर्म ही तो है। कर्म बंद कर दो तो, रूपा जी कह रहे हैं शरीर और आत्मा साथ में नहीं रहेंगे फिर है कि नहीं? तो कर्म तो करना है, हमें कार्य करना है। बिना कर्म किए हमारा शरीर भी आत्मा के साथ नहीं रहेगा। यह गलत विचार है कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें कर्म नहीं करना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं ना, क्या वो तो साधु बन गया, क्या कर्म करता है, कोई काम नहीं करता है, केवल आध्यात्मिक बात करते रहता है लोग अलग दृष्टि से इसको सोचते हैं, पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें कर्म नहीं करना होगा, यह गलत विचार है। वो आगे कहते हैं, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हो सकता है कि वे केवल 8 घंटे ही काम करते हो। अर्थात जो व्यक्ति आध्यात्मिक या भक्तिमय जीवन के विषय में रुचि नहीं रखता है, उस प्रकार का जीवन यापन नहीं करता है, वो व्यक्ति तो केवल 8 ही घंटे काम करता है। कितना? केवल 8 ही घंटे काम करता है। परंतु जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में लगे हैं वे तो 2400 घंटे कार्य करते हैं, 2400 घंटे कार्य में लगे रहते हैं। दूसरे कर्मी, अपने आप को कर्मी कहने वाले, काम करने वाले, वो लोग तो 8-9 घंटा ही काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा। पर जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं वो 2400 घंटे कर्म करते हैं, रूपा जी बता रहे हैं। और उनको थकान का भी अनुभव नहीं होता है। बताओ, ये लोग 8-9 घंटा ही काम करते हैं तो हाफ जाते हैं, है ना, हाफने लगते हैं इतना काम। परंतु आध्यात्मिक लोग जब कर्म करते हैं, 2400 घंटे कर्म करते हैं, उनको थकान भी नहीं होती है। विशेष बात है नहीं? तो प्रभुपाद जी अपना ही उदाहरण बताते हैं स्वयं का। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, यह मेरा व्यावहारिक अनुभव है। प्रभुपाद जी स्वयं का ही अनुभव बता रहे, ये मेरा अपना व्यावहारिक अनुभव है कह रहे हैं। मैं यहां पर हमेशा काम करता रहता हूं, बता रहे हो, मैं हमेशा काम करते रहता हूं। क्या काम करते हैं? कुछ मैं पढ़ता हूं, कुछ लिखता हूं, 2400 घंटे कुछ पढ़ता हूं कुछ लिखता हूं, 2-4 घंटे नहीं, 2400 घंटे मैं करता हूं। केवल जब मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ प्रसाद पाता हूं, कुछ भूख लगती है ना तब मैं कुछ प्रसाद लेता हूं, और नींद आती है तो बिस्तर में चला जाता हूं बस, अन्यथा मैं कभी थकता ही नहीं हूं। प्रभुपाद जी के स्वयं के वाक्य है, अन्यथा मैं कभी भी थकता ही नहीं हूं। ये आध्यात्मिक कार्यों की विशेषता है, थकता ही नहीं। आप यह जानकर चकित होंगे कि वृंदावन के 6 गोस्वामी प्रतिदिन केवल 1.5 घंटा ही सोते थे। 6 गोस्वामी, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, केवल 1.5 घंटा सोते थे। आश्चर्य होगा आपको यह जान के प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आध्यात्मिक कार्यों में वो इतना अधिक व्यस्त रहते थे, इतने कर्म थे उनको आध्यात्मिक कार्य, केवल 1.5 घंटा सोते थे। आध्यात्मिक जीवन इतना दिव्य और पुष्टिदायक है कि आपको थकान का अनुभव नहीं होगा। अपने 1.5 घंटे की भगवद गीता के क्लास में क्या होता है हमको पता है है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको उस स्तर तक आना है। 1.5 घंटे के भगवद गीता के क्लास में ही हमको जब नींद आती है और वहां 6 गोस्वामी केवल 1.5 घंटा ही सोते थे, हम 8 घंटा सोने के बाद भी भगवद गीता के क्लास में हमको नींद आती है और वो 6 गोस्वामी 6 गोस्वामी केवल 1.5 घंटा सोते थे। तो प्रभुपाद जी हमको क्या बताना चाह रहे हैं? प्रभुपाद जी हमको बताना चाह रहे कम से कम सत्संग में तो मत सो कैसे नहीं सोएंगे? यदि हमारे पास आध्यात्मिक सेवाएं होगी तो हमको रुचि आएगी और उस रुचि के कारण हमको नींद नहीं आएगी। अन्यथा मन का स्वभाव है 45 मिनट से ज्यादा वो सुन नहीं सकता। मैंने पहले ही क्लास में कहा था भगवद गीता सुनने का समय ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द माइंड, मन की कैपेसिटी जो है क्षमता भगवद गीता सुनने की, ओनली 45 मिनट से 45 मिनट। भागवतम या थोड़ा लीला कथा या ड्रामा वगैरह सुनना देखना है, आध्यात्मिक ड्रामा, तो वो जो कैपेसिटी है वो 1 घंटा, 1 आवर तक मन डाइजेस्ट कर सकता है। और सिनेमा देखने की कैपेसिटी 3 घंटा है कि नहीं? ये हमारी दशा है। भगवद गीता 45 मिनट्स ओनली, और षट गोस्वामी दे यूज टू स्लीप ओनली फॉर 90 मिनट्स, 90 मिनट्स 1.5 घंटा। हमको एटलीस्ट ये चक्र तो चेंज करना चाहिए कि 3 घंटा भगवद गीता का क्लास, 2 घंटा ड्रामा या लीला कथा का सरश्रवण, 1 घंटा भजन कीर्तन, सिनेमा के लिए नो टाइम। ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कम से कम इतना समय नहीं है सिनेमा वगैरह, मदर ऑफ सिन सिनेमा अर्थात, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से कहते हैं कि वो इतने अधिक, और वो फिर क्या है, आप वो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा करोगे तो होगा क्या? वो कहते हैं आध्यात्मिक जीवन इतना दिव्य और पुष्टिदायक है कि आपको थकान का अनुभव नहीं होगा और आपको लगे रहना है, यह भाव आपका रहेगा कि बस आपको, हमको लगे रहना है आध्यात्मिक कार्यों में, लगे रहना है, लगे रहना है। हाँ, अभी जप करना है, फिर कुछ पढ़ना है, फिर कुछ मंदिर में जाना है, फिर किसी भक्त से बातचीत करना है, फिर सत्संग में जाना है, फिर प्रवचन कुछ प्रीचिंग करना है, फिर वो भक्त से बात करना है, फिर वो भक्त से बात करना है, फिर भगवद गीता पे चर्चा करना है, फिर भागवतम पे कुछ चर्चा सुनना है, ऐसा लगे रहो, लगे रहो, लगे रहना है। प्रभुपाद जी कहते हैं आप निर्भय हो जाएंगे, इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि आप निर्भय हो जाएंगे, आपको भय ही नहीं रहेगा किसी वस्तु का, किसी विषय का, या किसी मनुष्य का, किसी प्राणी का, ना फ्यूचर का ना पास्ट का। ज्यादा तो भयभीत करने वाला फ्यूचर है, नहीं भविष्य, दूसरा कौन डराता है हमको? भविष्य ही डराते रहता है, तो भविष्य का भी भय नहीं रहेगा, निर्भय हो जाएंगे। और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि यह आध्यात्मिक धरातल ही कर्मसु कौशलम है, इसी को कर्मसु कौशलम कहते हैं, इसी को सर्वोत्तम कर्म कहते हैं, सर्वोत्तम कर्म करने का कौशल्य कहते हैं। कौशलम का अर्थ है निपुण सेवा, सेवा में एकदम निपुण होना। इसका अर्थ है कि यदि आप इस विधि को सीख ले कि योग के धरातल पर किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो यह कर्म करने की सर्वोच्च कुशलता है जो आपको प्राप्त हो जाएगी, और फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा। अर्जुन को यही बात भगवान समझा रहे हैं, निर्भय हो जाओ, क्यों भयभीत हो रहे हो। यदि कोई व्यक्ति श्रीकृष्ण भावना भावित नहीं होता तो वह इस कर्म बंधन के संकट से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। ये जो संकट है हमारे पूरे मानव समाज पे कर्म बंधन का, वो कर्म बंधन से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाएगा यदि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो एक ही रास्ता है, श्री कृष्ण भावना भावित होना। तो श्री कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वही कर्म बंधन से मुक्ति पा सकता है। कहने का अर्थ है कि कर्म करने के लिए मना ही नहीं है। आप ये मत सोचिए कि क्या करे, कल से ऑफिस में जाए कि नहीं जाए, क्या करे। कर्म तो ऐसे है, मेरे कर्म तो ऐसे है कि फलाने चीटर लोगों के साथ ही संबंध आता है सबसे ज्यादा। हाँ, ऐसे लोगों के साथ संपर्क आता है जो एकदम भक्ति में जीरो है, जीरो नहीं निगेटिव है, क्या करे। लाइफस्टाइल तो ऐसा है, कर्म तो ऐसा है, क्या करे। कल से ही, कल का ही प्रश्न है, क्या करे कल सुबह उठते से ही। तो जैसे एक पारा होता है ना, मर्क्यूरी पारा, पारा बहुत विषारी, जहरीला है, विषारी है, पॉइजनस। परंतु जब कोई तज्ञ व्यक्ति अर्थात कोई वैदिक शास्त्र वाला, जो वैदिकीय शास्त्र जानता है, मेडिकल साइंस वाला, वो व्यक्ति क्या करता है, उसी पारे को, उसी मर्क्यूरी को इस प्रकार से उसमें कुछ ऐसा कुछ ऐड कर देता है कि नहीं, उस मर्क्यूरी में, उस पारा जो होता है उसमें ऐसा कुछ वस्तु या चीज कुछ ऐसा ऐड कर देता है कि वो ही पारा औषधि बन जाता है, है कि नहीं। आपको पता है ये पारा HG मर्क्यूरी है जहरीला, यदि खा जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगा। परंतु वो जो वैद्यकीय तज्ञ रहता है वो क्या करता है, उसमें कुछ जो भी कुछ ऐड करता है, वो ऐड करने से वही पारा औषधि बन जाती है, बड़े बड़े रोगों के लिए उपयुक्त औषधि बन जाती है। इसी प्रकार से वास्तविक हमारे जो कर्म है, भौतिक संसारिक कर्म जो है, इंद्रिय तृप्ति के लिए भी हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे जो कर्म है नेचुरली उनको देखा जाए तो ये बंधन में हमको डालते हैं, अर्थात पॉइजनस है। हाँ, पारा जैसा होता है ना, मर्क्यूरी के जैसे क्या है, जहरीले है, बंधन में डाल देते हैं हम। परंतु इन्हीं कर्मों में कुछ ऐड कर दो ऐसा कुछ चीज, हाँ, इन्हीं कर्मों में कुछ एडिशन यदि कर देते हो, कुछ मिला देते हो, तो वो क्या बन जाता है, औषधि बन जाता है। तो इन्हीं कर्मों में हमको क्या ऐड करना है, कृष्ण भाव, कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा जो है, कृष्ण भावना भावित होना। तो ऐड कृष्णा, इन्हीं कर्मों में यदि हम कृष्ण को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो जहर नहीं रहता है, वो बंधन नहीं रहता है। जैसे कि अर्जुन अभी बाद में करेगा, कृष्ण को ऐड करना अर्थात कृष्ण भगवान के उपदेशों का पालन करना, कर्म करते हुए, कर्म करते हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा जाता है भौतिक संसार जो है ना, ये एक भव सागर है, बड़ा समुद्र है, और उसमें वासनाएं तृष्णा रूपी जल है। ये भव सागर का जल कौन सा है? वासना है, इच्छा है, तृष्णा है, ये इसका जल है। अब समुद्र में भी तरंगे उठती है ना, लहरें, तो ये भव सागर रूपी समुद्र पे भी लहरें उठती है। तृष्णा वासना इसका जल है और मोह इसकी तरंगे है। क्या है? मोह। मोह अर्थात मोहित हो जाना, अट्रैक्शंस, खिंचाव। ये जो मोह है ये इसकी क्या है? लहरें है। आप सोचिए कि ये समुद्र में रहते हुए हमको किस प्रकार से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है? इतनी बड़ी बड़ी भयानक लहरें है ये, और रह रहे हम इस समुद्र के अंदर, कैसे तैरेंगे, किस प्रकार से स्विमिंग करेंगे इसमें अपने आप को बचाने के लिए, किस प्रकार से बचाएंगे अपने, कैसे पार हो जाएगी? नहीं है, बड़ा समुद्र अथा होता है, थांग। तो रास्ता केवल एक ही है, हम जो भी डिजायर जो भी कर्म करते हैं उसमें कृष्ण को ऐड करना, कृष्ण को ऐड करना अर्थात कृष्ण को मिला देना, अर्थात भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करना, भगवान कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना। यदि हम भगवान कृष्ण का आश्रय इस भवसागर में ग्रहण कर लेंगे, आश्रित हो जाएंगे भगवान के, तो हमको ये समुद्र के ऊपर तैरना की आवश्यकता नहीं, स्विमिंग की आवश्यकता नहीं, बोट की आवश्यकता नहीं, तैरने की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम चरणों का आश्रय ले लेते हैं भगवान के, तो ये भव सागर जो है ना, ये पूरा भव सागर गोखुर के इतना हो जाता है, गाय का खुर होता है ना पैर का, ये गोखुर अपने आप गाय के खुर के इतना हो जाता है ये समुद्र भव सागर। तो इसको तो कोई भी क्रॉस कर सकता है, गोखुर की इतना हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण का शरण आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कहने का अर्थ, भगवान यही कह रहे हैं, प्रभुपाद जी भी यही समझा रहे हैं कि कर्म में भक्तिमय वातावरण रखो, अर्थात कृष्ण कॉन्शियस रह के कर्म करो, इसी को योग कहते हैं और वही टॉप मोस्ट स्किल है कर्म करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न है? प्रश्न हाँ, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? भगवान के लिए कोई मर्यादाएं नहीं है, या भगवान के ऊपर कोई लिमिटेशंस भी नहीं है। प्रारब्ध कर्म का फल हमको प्राप्त हो गया है, वो हमारा प्रारब्ध है, वो हमको भोगना ही पड़ेगा। यदि भगवान चाहे तो वो उसको मिटा सकते हैं, पर अब भगवान ने चाहना चाहिए। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। पर हम जैसा देखते हैं कि प्रारब्ध कर्म है, भगवान को प्रसन्न करना जरूरी है, पर हमारा भाव क्या होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमारा स्तर क्या है, कौन से स्तर पे जाना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो स्तर तक जाने का प्रयास करना चाहिए। मान ले हमारे प्रारब्ध कर्म हो गए भी, तो भी भक्ति का हमारा स्तर इतना ऊंचा उठना चाहिए, हाँ, कि भगवान संभाले हमको जो भी है। तो भगवान कभी भी गलत तरीके से नहीं संभालते है ना, भगवान के लिए कोई बात असंभव नहीं। जैसे मैंने तीन कर्मों का जो चर्चा हुई हमारी, उसमें प्रारब्ध कर्म अर्थात तो फल बन गया है, अभी वो हमको टेस्ट करना पड़ेगा, अभी मिलेगा हमको, बन गया है हमारे लिए, फिक्स बन गया है, तैयार हो गया है। परंतु भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब यदि हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं करते, भगवान भक्ति नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो फल तो हमको भोगना ही है। परंतु ब्रह्म संहिता कहती है कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भजाम। भक्ति करने से, भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करने से कर्म निर्दहति अर्थात कर्म को नष्ट किया जा सकता है, परंतु हमको भक्ति करना चाहिए, ये मुख्य बात है। ब्रह्मदेव ने कहा है, ये ब्रह्म संहिता का वाक्य है, ब्रह्मदेव कहते हैं, भगवान कहते सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। उन्होंने ये नहीं बोला कि अहम त्वाम संचित क्रिय कर्माणि पापेभ्यो, ऐसा नहीं कहा है, सर्व। तो भगवान के बात पे हमको पूरी विश्वास है। अब कंडीशन यह है उसकी कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहिए या हमारे शरणागति का स्तर क्या है, हम पूरी तरह से भगवान को शरण है कि नहीं है, है कि नहीं। यदि भगवान ये बात मान लो एक्स वाई जेड बात नहीं कर सकते, ऐसा होता तो वो भगवान ही नहीं होते है कि नहीं। वो भगवान है अर्थात वो कुछ भी कर सकते, वो सही को गलत कर सकते हैं, गलत को सही कर सकते हैं, ही इज फुल फ्री टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा है सर्व पापे भ्यो, सब कुछ मैं मुक्त कर सकता हूं, तभी तो भगवान है। और कृष्ण कुछ हाँ हाँ क्या हुआ, उसका तत्व यह है कि व्यक्ति जब एक कर्म बंधन में फंस जाता है तो वो कर्म बंधन से छूटने का प्रयास करता है भौतिक स्तर पे ही। हाँ थे ना, पर फंस गए। तो कहने का अर्थ है कि वो जो व्यक्ति साधु थे उनको प्रेम जीवात्मा से हो गया, भौतिक स्तर है ना चूहा, तो जड़ भरत भी हिरण के साथ उनको अट्रैक्शन हो गया है, भरत महाराज को भागवतम में कथा है। धोखा तो पदम पदम महापदम, हर कदम पे धोखा है, कभी भी कुछ भी, भक्ति में हम बहुत है, कभी भी कुछ भी विचार मन में आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि नित्य संग करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। हाँ? कोई हिरण है नहीं, वो क्या कहते जंगली गाय होती है ना, जंगली गाय पता होगा आपने देखा होगा, जंगली गाय, वो जंगली गाय है यदि एक साथ जंगल में 15-20-25 एक साथ जब दौड़ती है जंगल में जाती है ना, तो शेर की हिम्मत नहीं होती है उनके ऊपर अटैक करने की, आक्रमण करने की। गलती से एक गाय पीछे रह गई, उसको कुछ अच्छा हरा भरा दिख गया, वो पीछे रह गई, बाकी की गाय आगे चली गई, एक सेकंड में शेर उसको झपट के खा जाएगा। भक्ति करने का जो सही तरीका है वो सबसे बड़ा और सबसे सही और सबसे उपयुक्त तरीका है सत्संग। सब भक्त साथ में है, सब जप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, भगवान भगवत तत्व की चर्चा हो रही है, माया की हिम्मत नहीं होगी किसी एक को उठा के ले जाए, लेकिन कोई एक बोले कि मैं अपने कुटीर में जाके बैठ जाता हूं, भक्तों का संग नहीं चाहिए, मुझे तो सब पता है, मैं तो अपने काम में मस्त हूं, मुझे भक्तों की क्या आवश्यकता है, भक्तों से ज्यादा तो मैं जानता हूं, वो अकेला बैठ गया है, शेर खा जाएगा, माया रूपी शेर खा जाएगा, माया रूपी शेर खा जाएगा अर्थात भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए सत्संग चाहिए, इसलिए ग्रुप में रहना चाहिए, ग्रुप में अर्थात भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों में आदान प्रदान होना चाहिए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन रूप गोस्वामी पाद क्यों कह रहे हैं सब बातें, भक्तों ददामी गृहनाथी है ना, गृहवाख्याती, भक्तों के साथ आदान प्रदान करो, चर्चा करो, जो गुह्य है, गुह्यम आख्यात, जो गुह्य है उसको बताओ, उनसे सुनो, पूछो, पूछताछ करो, इससे सत्संग होता है और फिर माया हमारे ऊपर हमला नहीं करेगी। नहीं तो ऐसे अकेले अकेले भक्ति करना इम्पॉसिबल है, असंभव। उस कथा की भी बात यही है कि कर्म बंधन में वो फंस गए क्योंकि उनको चूहे के साथ, चूहे से उनको प्रॉब्लम, दूर चूहे का प्रॉब्लम हो रहा था, उनको डिस्टर्ब करता था बार बार। तो उस चूहे का प्रॉब्लम से दूर होने के लिए उन्होंने दूसरा भौतिक सॉल्यूशन निकाला, भौतिक रास्ता। एकादशी का व्रत कीजिए, 25 माला जप कीजिए, भगवान को शरणागति, भगवान को शरण जाने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए, तो सारे कर्म बंधनों से मुक्ति हो सकती है ना, सारे कर्म। हरे कृष्ण।